तब आस्था ने मुस्कुराते हुए पलटकर अरमान को गले से लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर छुपाकर उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगी। इस वक्त अरमान के दिल की धड़कन सिर्फ एक ही नाम गुनगुना रही थी, आस्था, आस्था। अरमान की जिंदगी में खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सब कुछ बहुत ही प्यार और खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिंघानिया मेंशन के पूरे पूरे एनवायरनमेंट में सिर्फ प्यार ही प्यार हो। अरमान आस्था के साथ प्यार करने में बिजी था। ध्रुव वंशिका के साथ प्यार कर रहा था। आकाश रश्मि के साथ प्यार कर रहा था। इतना ही नहीं, आहान रौनक के साथ प्यार कर रहा था। सिंघानिया मेंशन की हर एक फिजाओं में प्यार ही प्यार था। प्यार मोहब्बत के साथ कुछ महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन नानी माँ, साथ ही साथ दादाजी, घर के बुजुर्ग बैठकर एक दूसरे से गप्पे हाँकने में बिजी थे। इसी बीच एक अनचाहा सा शोर उन्हें सुनाई दिया। अब थोड़ा सा हैरान भी हुए। ये किसी और का नहीं बल्कि अंश के रोने का था। अंश के रोने की आवाज सुनकर आस्था और अरमान, जो कि अपने कमरे में थे, वो तुरंत दौड़कर सीढ़ियों की तरफ भागे थे। इतना ही नहीं, आहान रौनक ध्रुव वंशिका सुमित राधिका एंजल अविनाश, जिस जिस के कानों में अंश के रोने की आवाज सुनाई दी, सभी दौड़कर हॉल की ओर भागने लगे थे। और जैसे ही वो हॉल में गए तो लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो अंश को नानी माँ को देकर गए थे। नानी माँ की गोद में अंश बड़े ही प्यार से सो गया था। अब उसके सोने के बाद नानी माँ ने उसे हॉल में ही बड़े सोफे पर अच्छी तरह से लिटा दिया था, और वो भी थोड़ी सी ही दूरी बनाकर वहीं पर अंश को देखते हुए दादाजी से बातें करने लगी थी। क्योंकि हर रोज की तरह नानी माँ अंश की अपने हाथों से गर्म गर्म तेल से मसाज किया करती थी, ताकि अंश की हड्डियाँ पूरी तरह से मजबूत हों। और पूरे दो घंटे तक अंश नानी माँ के साथ ही रहा करता था। और जब नानी माँ हल्का सा तेल गुनगुना करके अंश को मसाज दे रही थी, उसके बाद उन्होंने उसे अच्छी तरह से नहला दिया। और फिर जब अंश एक गहरी नींद में सो गया तो उन्होंने उसे सोफे पर लिटा दिया था। और इस बीच दादाजी और नानी माँ हर रोज की तरह एक साथ चाय पीने लगे थे। लेकिन इस बीच अंश के रोने की आवाज से सभी लोग चौंक गए थे। नानी माँ तुरंत अंश के पास गईं, लेकिन उनकी हैरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अंश वहाँ दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उसके रोने की आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। ये देखकर तो नानी माँ की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और वो हैरानी से चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाकर देखने लगी थी कि अचानक से अंश कहाँ जा सकता है और उसके रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। और तब तक सभी लोग नीचे आकर नानी माँ के पास खड़े हो गए थे, और सभी ने बड़ी बड़ी आंखों से आकर नानी माँ और दादाजी से पूछा था, क्या बात है दादाजी, और ये अंश इतना क्यों रो रहा है, और आवाज कहाँ से आ रही है, और अंश कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जैसे ही आहान ने थोड़ा घबराते हुए ये कहा, सभी के चेहरे पूरी तरह से मुरझा गए थे, क्योंकि अंश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज लगातार आ रही थी। आस्था तो केवल डबडबाई आंखों से कभी नानी माँ को देख रही थी और तो कभी अपने आसपास हॉल में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी। वहीं अरमान, जो कि पूरी तरह से भावुक था, पिता होने का एहसास उसे पहली बार हुआ था, इसलिए उसने थोड़ी सी कड़क आवाज में कहा था, मेरा बेटा कहाँ है, उसकी आवाज, वो कैसे रो सकता है, वो अरमान सिंघानिया का बेटा है, उसे रोना नहीं चाहिए, उसे रोना नहीं चाहिए। अचानक अरमान के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। इस वक्त अंश के रोने की आवाज उसे काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी, लेकिन तभी सभी के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी थी। नानी माँ ने रोना शुरू कर दिया था कि पूरे का पूरा घर हिल गया था, लेकिन अंश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब तो सब लोगों की हैरानी के मारे बुरा हाल हो चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अंश गया कहाँ। जल्दी ही पूरी की पूरी सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी। चारों तरफ सभी घूम घूम कर अंश को देखने लगे थे, क्योंकि अंश के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी जल्दी ही अरमान के इशारे पर आकाश सुमित ध्रुव आहान सभी दौड़कर बाहर की ओर जाने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाते, ठीक उसी वक्त बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। बंदूक चलने की आवाज सुनकर तो सब लोगों का दिल धक से रह गया था। वहीं आस्था को तो ऐसा लगने लगा मानो किसके पैरों में जान ही ना बची हो। आस्था तुरंत ही एक तरफ छुकती चली गई थी। रश्मि राधिका वंशिका जल्दी से आस्था को संभालने की कोशिश करने लगी थी। वहीं रौनक की भी हालत आस्था से कुछ कम नहीं थी, और तुरंत ही ऑटोमेटिक रौनक का हाथ अपने पेट पर आ गया था। उसे डर सताने लगा था और उसकी पलकें कम कपाने लगी थी। वहीं जैसे ही आहान ने रौनक की ऐसी हालत देखी, वो तुरंत ही उसके पास गया, उसका हाथ थामकर उसे शांत होने के लिए कहने लगा था। वहीं दादाजी अब तुरंत घबराई हुई आवाज में थोड़ा तेज बोले थे, ये बंदूक चलने की आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? ये क्या हो रहा है सिंघानिया मेंशन में? हमारा अंश कहाँ है? दादाजी की आवाज सबके कानों में पूरी तरह से गूंज रही थी और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती, अंश यहाँ है। अब ये आवाज सुनकर सभी ने उस ओर देखा था और जैसे उन्होंने सामने की ओर देखा तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि दरवाजे पर वीर साथ ही साथ वसुंधरा खड़े हुए थे। वीर और वसुंधरा को वहां देखकर और वसुंधरा की गोद में अंश को देखकर सभी की आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल होने लगी थी। वहीं आस्था तो वसुंधरा की गोद में अपने बेटे अंश को देखकर पूरी तरह से सहम गई थी, क्योंकि अभी तक आस्था नहीं भूली थी कि वसुंधरा वही औरत थी जिसने अरमान के साथ बद से भी ज्यादा बदतर सुलूक किया था। इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता था जो वसुंधरा जैसी औरत ने अरमान के साथ किया था। अब वसुंधरा की गोद में अपने अंश को देखकर आस्था ने तुरंत ही चीख मार दी थी और अरमान की आंखें पूरी तरह से लाल हो चली थीं। फ्लैशबैक। वसुंधरा और वीर, जिन्हें अरमान ने भले ही शहर से बाहर फेंकवा दिया था, लेकिन उस दिन के बाद वसुंधरा पूरी तरह से पागल हो उठी थी। उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो इस तरह से सब कुछ अपने हाथों से जाने नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस बार वे अंश को लेकर वहां मौजूद थीं। वहीं वीर का शरीर पूरी तरह से चोटों से लथपथ था, यहाँ तक कि वसुंधरा के भी पूरे चेहरे पर निशान मौजूद थे। ये देखकर आस्था और साथ ही साथ बाकी सबके होश उड़ गए थे। वहीं नानी माँ गुस्से से आगे बढ़ी और एक जोरदार चाटा वसुंधरा के मुंह पर खींचकर मार दिया और उसके गोद से अंश को छीन लिया था। वो बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को अगवा करने की? तब वसुंधरा तुरंत घुटनों पर बैठकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपने पोते को क्यों अगवा करूंगी? हम तो इसकी जान बचा कर लेकर आए हैं। अब ये सुनकर तो सब लोगों के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। इतना ही नहीं, सबको काफी ज्यादा हैरानी भी हो रही थी कि आहान, ऐसे कैसे हो सकता है? सिंघानिया मेंशन में इतनी ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कोई अंश सिंघानिया को अगवा करने की कोशिश करता है, उसकी जान लेने की कोशिश करता है? अब वहाँ ध्रुव, सुमित, आकाश, इन सब के लिए सब कुछ बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था और उन्होंने अपनी अपनी बंदूक निकालकर सीधा वीर के माथे से लगा दी थी। अब तो वीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। वहीं अरमान उस वक्त गहरी नजरों से सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा को देख रहा था। दूर दूर से कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने खड़ी हुई औरत उसे लगातार बेल्ट से मारती दिखाई दे रही थी।
अरमान का सर पूरी तरह से फटने को तैयार था। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को उसने उठाकर अपने सर पर रखकर टेप करना शुरू कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ हंसी खुशी और प्यारा सा माहौल था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ इस तरह से बिखर जाएगा ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिलहाल अरमान ने तुरंत ही ध्रुव, आहान और आकाश, सुमित को इशारा किया कि वो अभी कोई भी वीर या वसुंधरा को हाथ तक नहीं लगाएगा। ये सुनकर सब लोग पीछे हटकर खड़े हुए थे, लेकिन अभी अभिमान जी वसुंधरा के सामने जाकर खड़े हो गए और एक चांटा खींचकर उसके मुंह पर मारते हुए बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मुझे अच्छी तरह से संदेह है तू ये सब नाटक कर रही है। कहां से बचाकर लाई है तू मेरे पोते को? मेरे पोते को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये बोलते हुए वो बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे। तभी अरमान तुरंत अपने पिता के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन वसुंधरा सबके सामने दोनों हाथों को जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई और बुरी तरह से रोते हुए बोली, हमारी बात का यकीन कीजिए, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो वीर बेटा दिखाओ जरा। ये बोलकर वसुंधरा ने वीर की ओर इशारा किया और उसने मोबाइल से कुछ वीडियो सबको दिखाने शुरू कर दिए। एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को अंश को गोद में लेकर भागते हुए दिखाया गया था और तभी वसुंधरा ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। तब वसुंधरा सबकी ओर देखकर बोली, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों को हम पर यकीन नहीं है, इसलिए अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए हमने ये वीडियो बनवाई है ताकि आप लोग हमारी बात पर यकीन करें। ये बंदूक भी हमने उसी आदमी से छीनी है, वो कहते हैं हम उसे नहीं रोक पाए, लेकिन हाँ हमने उसके हाथ में एक निशान देखा था, वो अजीब सा जानवर के चेहरे जैसा निशान था, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं देख पाए। अब जैसे ही वसुंधरा और वीर ने ये बोला, अचानक अरमान, ध्रुव, सुमित सबकी आंखें हैरानी से बड़ी की बड़ी हो गईं। एक अनचाहा सा चेहरा उन लोगों की आंखों के सामने आ गया था, लेकिन ठीक उसी वक्त अविनाश उन लोगों पर चिल्ला पड़ा, जस्ट शट अप, ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें इन लोगों की ही कोई चाल है। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, अरमान ने एक नज़र वीर और वसुंधरा की ओर देखा, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ आस्था और अपने बेटे पर था। अरमान ने जल्दी ही आस्था को देखते हुए कहा, आस्था, अंश को लेकर रूम में जाओ। अरमान की आवाज़ जैसे ही वहां गूंजी, जल्दी ही सारी लड़कियां आस्था के साथ अंश को लेकर कमरे में जाने लगीं। पीछे हॉल में सभी जेंट्स और नानीमा मौजूद थे। नानीमा एक बार फिर खुद को रोक नहीं पाई और वसुंधरा के सामने जाकर बोली, एक बात पता कलमुही, तुझे क्या बार बार मेरे परिवार को ही बुरी नज़र लगानी है? क्या तुझे हमारी खुशी हजम नहीं होती? अरे मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू जैसी नीच औरत कभी भी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती है। जरूर इसके पीछे पीछे तेरी कोई ना कोई गहरी साजिश है। मेरी बात ध्यान से सुन ले चुड़ैल, अगर तूने अब मेरे अंश को या मेरे अरमान या आस्था को बिल्कुल भी नजर लगाने की कोशिश की या मेरे इस प्यार से परिवार के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू मेरा नाम कभी नहीं भूलेगी, कि मेरा नाम शारदा देवी है। तू नहीं जानती गाँव में मेरा नाम कितना ज्यादा बदनाम है। अरे मेरी गोरी को एक बार गाँव की एक औरत ने तंग कर दिया था और मैंने उसे तब तक झाड़ू से मारा था, तब तक मारा था जब तक कि उसके नाक कान में से खून तक निकलना शुरू नहीं हो गया था। और तुम जैसी औरत को क्या लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? नहीं, मैंने तेरा मार मार कर कीमा नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी शारदा देवी नहीं। ये बोलते हुए नानीमा की आवाज पूरी तरह से सिंघानिया मेंशन में गूंज रही थी। नानीमा तो ठेठ गांव की थी, जो मुंह में आ रहा था अपना बोले जा रही थी। वसुंधरा मन ही मन में नानीमा से पूरी तरह से चिढ़ी हुई थी। साथ ही साथ वसुंधरा मन में सोच रही थी, न जाने इस बुढ़िया को कहां से ये बुढ़ा दादाजी उठा कर ले आया है। इस बुढ़िया को तो बात करने की तमीज नहीं है। एक बार मैं इस घर में आ जाऊं फिर देखूंगी मैं इसको, क्योंकि इस वक्त वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ नानीमा है। अचानक वसुंधरा एक बार फिर अपनी आंखों में आंसू लाकर नानीमा की ओर देखने लगी थी। लेकिन तब तक अभिमान जी आगे आए और उन्होंने वसुंधरा को घूरते हुए कहा था, अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू यहाँ कोई काम नहीं करेंगे, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे ही अभिमान जी ने यह कहा, वसुंधरा अंदर ही अंदर की लस्कर रह गई थी। लेकिन इस तरह से इतनी आसानी से इन लोगों को वो सुकून और खुशी से कैसे जीने दे सकती थी जिन लोगों ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। कहाँ महारानी और रानियों जैसी वसुंधरा जिंदगी जिया करती थी। उसके एक इशारे पर हजारों लोग उसके लिए काम करने को तैयार हो जाया करते थे। लेकिन आज सबकी नजरों में वसुंधरा की अहमियत सिर्फ एक पागल और सनकी औरत से अधिक कुछ नहीं थी। वो पूरी तरह से बैंक्रप्ट हो चुकी थी। उसके पास ना तो जिंदगी जीने के लिए कोई सहारा था, उसका पति अमरीश भी कब का इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब उसे बस किसी न किसी तरीके से अरमान की जिंदगी में जगह बनानी थी, क्योंकि अरमान के जितना पावरफुल और बिलियनेयर कोई और नहीं था। डियर रीडर्स, आप सभी के जबरदस्त प्यार और लगातार मिल रही डिमांड को देखकर मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारी इस कहानी को अब और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह आपने अब तक इस कहानी को अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दिया है, उसी तरह आगे भी आप मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहेंगे। आपका साथ मेरे लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद खास है। प्लीज मेरी बाकी कहानियां भी जरूर पढ़िए और बताइए कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। आपके हर एक कमेंट, हर एक शब्द से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। वैसे अभी भी इस कहानी में कुछ ऐसे दिलचस्प और रहस्यमय किरदार बाकी हैं जो आने वाले एपिसोड्स को और भी मजेदार और ट्विस्ट से भरपूर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए? बस मुझे चाहिए आपका प्यार, आपकी राय और आपका साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस सफर में मेरे साथ हैं। आई प्रॉमिस आने वाले एपिसोड्स आपको हर बार चौंकाएंगे और कहानी में और गहराई लेकर आएंगे। आपका इंतजार रहेगा।